ऐसे व्यक्ति संस्था के लिए भी रोग और अपने लिए भी रोग। जब कभी इमैच्योर आदमी को सेवा दे दी जाती है तो वह स्वामी का बुरा हाल कर देते हैं। पर क्या करें, हाइक से ये जाप होता नहीं। इसलिए कहा जाता है सेवा भी करते रहिएगा थोड़ी थोड़ी। कईयों का स्वभाव होता है वे अधिक सेवा करना जानते हैं, कम जाप करना जानते हैं, स्वामी उनसे भी काम लेता है। कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कोई ऐसे साधक होते हैं जो अधिक जाप कर सकते हैं, सेवा के प्रति उनकी रुचि बहुत कम है, स्वामी उनको भी एडजस्ट करता है, देखता है कैसा काम किससे लिया जा सकता है, कौन सा काम किससे लेना है। पर एक मूल बात याद रखने योग्य है, जाप तो हर एक को करना होगा, चाहे वह थोड़ी मात्रा में आप करते हैं, चाहे वह ऊंचे मात्रा में आप करते हैं, इसके बिना गुजारा नहीं। यही हमारी साधना है, यही से साधना आरंभ होती है और यही साधना का कभी अंत होता है तो यही साधना का अंत भी होता है। जाप कभी ना छूटे, साधना कभी ना छूटे। भक्तजनों, आज जो समस्याएं आप लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं, आप बहुत से प्रबंधक यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हुए हैं, जो समस्याएं आपके सामने खड़ी हो गई हैं, यदि उनके पीछे कोई कारण ढूंढा जाए तो एक ही कारण कहा जाएगा, आपने अभी साधना में परिपक्वता प्राप्त नहीं करी। काश साधना में परिपक्वता प्राप्त करी हुई होती तो आपके सामने संसार का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो समस्या प्रस्तुत कर सकता। वास्तव में समस्या आपके सामने प्रस्तुत की नहीं गई, आप स्वयं समस्या बन गए हुए हैं। आप स्वयं किसी दूसरे के साथ एडजस्ट करना नहीं सीखे। ये एडजस्टमेंट कौन सिखाएगा, ये साधना सिखाएगी जो आप लोगों ने की नहीं है, जो हमने की नहीं है। इसीलिए अनेक प्रकार के रोगों से हम ग्रस्त हो गए हैं। इन रोगों की चर्चा यहां पर करिए। इन रोगों से कैसे मुक्ति पाई जाती है, कैसे मुक्ति पानी चाहिए। रोगी तो नहीं रहना ना, ना स्वयं को और ना ही संस्था को रोगी करना है। इसीलिए ये समारोह इसका आरंभ किया गया है, इसीलिए इसका आयोजन किया गया है। आप यहां पधारे हैं, अपने अपने रोग यहाँ पर बहुत उच्च कोटि के साधक बैठे हैं, बड़े पुराने साधक बैठे हैं। मैं तो बहुत सहायता आपकी इन मामलों में नहीं कर सकूंगा, तो बिल्कुल निपट अनाड़ी हूं इन सब मामलों में। बहरहाल जहां तक साधना की बात है, साधना के लिए भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। मुख्यतः रोग तो अपने आप दूर हो जाते हैं यदि आप साधना में संलग्न हो जाएंगे। कठिनाई यही है, कुछ दिनों की साधना घर जाते ही हवा हो जाती है। काश घर जाके भी इसी प्रकार की साधना व्यक्तिगत साधक करे जैसे यहां होती है, या आंशिक भी करे तो भी उसे लाभ अवश्य होके रहेगा। हम आंशिक नहीं करते, ये बड़ी भारी दुविधा है। स्वामी जी महाराज जो बनाना चाहते हैं वही बनने के लिए यह तैयारी है, वही बनना चाहिए। उसी की तैयारी के लिए घर लौटिएगा। पुनः आपको याद दिला दूं, स्वामी जी महाराज का ध्येय ये कभी नहीं हो सकता कि आपको अध्यक्ष बना दिया जाए और साधना आपकी ठप कर दी जाए, आपको सचिव बना दिया जाए और साधना आपकी शून्य हो जाए। ये स्वामी जी महाराज का ध्येय बिल्कुल नहीं हो सकता। साधना करते हुए या जो कुछ आपको उपाधि दी गई है आप उसे साधना का एक अंग बनाएं, ये स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है। आप एक उच्च कोटि के साधक बन सकें, ये स्वामी जी महाराज का लक्ष्य है। जितनी सहायता उनसे मिल सके वह सहायता यहाँ से लेते जाइएगा। पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम भी अर्ज करता हूँ। परमेश्वर से आप सबके लिए कृपा भी मांगता हूँ, स्वामी जी महाराज से, गुरुदेव महाराज से कृपा भी मांगता हूँ। महाराज श्री कृपा करिएगा, हम सबको एक अच्छे साधक बनाइएगा, ऐसे साधक महाराज जिनको देखकर आपको शर्मिंदगी ना हो, जिनको देखकर आप गौरव का अनुभव कर सके महाराज, ऐसे साधक बनाइएगा। और फिर जो यहाँ इकट्ठ हुआ है, जो यहाँ एकत्रित हुए हैं महाराज, वह तो आपके विशिष्ट साधक हैं, इन्हें तो और भी ऊंचे साधक बनना है, एक सामान्य साधक नहीं, सामान्य साधक से ऊंचे साधक बनना है। कृपा करिएगा गुरुदेव, कृपा करिएगा मेरे बाबा, कृपा करिएगा, कृपा करिएगा, कृपा करिएगा। आज प्रातः जो भगवा चोला धारण करने की सेरेमनी हुई है, ऐसा चोला धारण करने के पीछे मेरा आशय ये नहीं कि मैं स्वामी कहलाना चाहता हूँ। परमेश्वर साक्षी है, राम दरबार में बैठा हुआ हूँ, मेरा ऐसा आशय बिल्कुल नहीं कि ऐसा करने से किसी को कोई कष्ट पहुंचे, किसी की भावना को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, ऐसा आशय तुम्हें स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। ना ही मेरा ये आशय आज से आप मुझे स्वामी कहने लग जाए, या आप आज से मुझे महाराज कहने लग जाए, ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं। यदि आप में से किसी को या यहां से बाहर किसी को इस बात का संदेह है, तो मेरी अपनी बदकिस्मती है, मैं समझूंगा कि वह व्यक्ति अभी मुझे समझ नहीं पाए। ऐसा आशय मेरा बिल्कुल नहीं भक्तजनों, मैं तो ये सोचता हूं, पहले 65 दिन ये कहना करता था, अब 365 दिन बहनूंगा, इसमें आपका कुछ नहीं, ये मेरे अपने लिए है। आपसे मैं किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं हो गया, ये आपको मैं आश्वासन दिलाता हूं, मैं तो आपसे भी कहीं निकृष्ट हूं। आप ये सत्य जानिएगा, आप तो जानते ही हैं, यही चोला जो आज आप देख रहे हैं पहने हुए, भिखारी भी पहनते हैं और जिसे लोग कोई कहते बोलते हैं, मैं तो ये कहूंगा मैं आज से कोई कहलाने योग्य हो गया, ना कि महाराज या स्वामी। आप बेशक अपने स्थानों पर जाके ये घोषणा कर दीजिएगा कि कोई मुझे स्वामी न कहे, न ही मुझे कोई महाराज कहे। मेरा नाम विश्वामित्र है, परमेश्वर की कृपा से अच्छा नाम है, आप इसे जो मर्जी कहके कहें, कोई कहके कहें तो भी आपका हार्दिक स्वागत है। पर ऐसा सोचना कि मैंने इसलिए चोला धारण किया है कि स्वामी कहलाऊं या महाराज कहलाऊं, ये सब नहीं है, ये भ्रांति है, इसे निकालना चाहिए अपने दिमाग से, बिल्कुल सत्य। धन्यवाद। जैसे ही आदमी एक साधक सेवा के लिए निकलता है, परमेश्वर की कृपा से उसे कुछ सेवा मिलती है, गुरुजनों की प्रताप से, उनकी वाणीच्छा से जो किसी सेवक को सेवा मिलती है, जैसे ही वो सेवा क्षेत्र में विचरता है, निकलता है, अनेक कठिनाइयां उसके सामने आती हैं, आनी भी चाहिए, सीखेगा कहां से? सेवक बनने जा रहे हो ना, इन छोटी छोटी बातों से घबराते रहोगे, डरते रहोगे, तो कब सेवक बन पाओगे, कहां सेवक बन पाओगे? अपमान भी होगा, तिरस्कार भी होगा, अब यश भी मिलेगा, आमने सामने गालियां भी सुनने को मिलेंगी, जो लुक छुप के होता है उसकी बात तो अलग है, जो अपने मानस से आपके प्रति द्वेष रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, वह तो बात अलग है, अभी तो बात सिर्फ आमने सामने की हो रही है। ये सब कुछ मिलेगा, ये आप ही के लिए नहीं है, परंपरा इसी प्रकार की चली आ रही है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास पुणे के आश्रम में एक वृद्ध गुरु आया करते, आचार्य आया करते। अपने मुखारविंद से जब वे प्रवचन करते, स्वामी अखंडानंद जी महाराज गदगद हो जाते हैं। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब प्रवचन करते तो वे सुनते और सुनने के बाद उन्हें गालियां निकालते हैं। आप तो शिष्ट साधक हैं, इसलिए गाली भी निकालेंगे तो बड़ी साफ सुथरी निकालेंगे, लेकिन वह आचार्य साफ सुथरी गाली नहीं निकालते हैं, बड़े गंदे गाली निकालते हैं। ये उनका रोज का कार्यक्रम है। अखंडानंद जी महाराज नित्य उनकी गालियां सुनते हैं, एक आधी गाली नहीं, अनेक गालियां आचार्य निकालते हैं, सुनते हैं और सुनके चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं कहते। एक दिन न जाने स्वामी अखंडानंद जी महाराज के मन में क्या बात आई, कहने लगे, महाराज श्री इसी जीवन से आप भगवान नाम जपते हो, इसी जीवन से आप सुंदर प्रवचन बोलते हो, ऐसे प्रवचन आपके प्रवचन सुन के आदमी मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है, और उसी जबान से आप इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते हो महाराज, आज आपसे प्रार्थना करने को मन कर रहा है महाराज, ये गाली निकालनी बंद कर दीजिएगा। आचार्य अखंडानंद महाराज कोई मामूली हस्ती नहीं, ध्यान दे, जो लोग उनको जानते हैं, कुछ वर्ष पहले उन्होंने शरीर महासमाधि ग्रहण करी है, कभी महाराज कहा करते कोई तो एक ही महात्मा की याद आती कि ये अवश्य स्वामी अखंडानंद जी की बात कर रहे होंगे। विश्वभर के बड़े मशहूर महाराज उनके कंधे पर हाथ रख के बड़े आचार्य कहते हैं, अखंडानंद क्यों ना गाली निकाल, क्यों रोकते हो मुझे गाली निकालने से, मैं गाली निकालूंगा तुझे, क्यों, यदि मेरी गाली सहन नहीं कर सकोगे तो जिस वक्त संसार में जाओगे तो उनकी गालियां कैसे सहन करोगे, उनका अपमान कैसे सहन करोगे, उनका तिरस्कार कैसे सहन करोगे, एक महात्मा बनने जा रहे हो, एक सेवक बनने जा रहे हो और डरते हो गालियों से, डरते हो अपमान से, डरते हो तिरस्कार से, डरते हो अपयश से। आमने सामने की बात छोड़ो भर्जना, आप उसको तो डाल सकते हैं, उसका क्या क्या जाए, जो मानस से आपके प्रति द्वेष रखते हैं, जो मानस से आपके प्रति दुर्भावनाएं रखते हैं, वह भी साधक हमारे बीच ही ऐसे ग्रुप बैठे हुए, आमने सामने की बात छोड़िएगा, चर्चा तो हम अपने ही परिवार की कर रहे हैं ना, हमारे ही अंदर ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं, ऊपर से बहुत नीचे नीचे बनेंगे और भीतर से आपकी गहरी से गहरी जड़ को काटने पर तुले हुए हैं। हमारे बीच मित्र कह लीजिएगा, ऐसे लोगों को ऊपर से मित्र दिखाई देते हैं, घनिष्ठ मित्र, ऐसे लोगों का यदि पता लग जाए, पता लग जाता है भक्तों, जैसे आप साधना में आगे बढ़ोगे, जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं ना, तरंगे से कहते हैं, लहरें जिन्हें कहते हैं, जब आप पर साधना द्वारा या बिना साधना के भी परमेश्वर की कृपा होने लग जाती है, तो आप इन तरंगों के प्रति इतने ग्रहणशील बन जाते हैं, आपको छत से आवाज हो जाता है, अमुक व्यक्ति आपके प्रति सद्भावना करता है या दुर्भावना,
कोई कठिन बात नहीं है भक्तजनों, पर इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नहीं मानना। उपलब्धि मानोगे तो वही रुक जाओगे, इसे उपलब्धि नहीं मानना। समझो आपके ऊपर मेरे राम ने कृपा करी है, आपको ये पता लगने लग गया है कि अमुक व्यक्ति आपके प्रति सद्भावना नहीं दुर्भावना रखता है। एक साधक का क्या कर्तव्य बनता है ऐसे व्यक्ति के प्रति? आमने सामने के साथ तो आप बड़ी आसानी से रास्ता छोड़ दोगे, इधर हो जाओगे, उधर कर लोगे, अवॉइड करोगे, ये करोगे, इस व्यक्ति का क्या करोगे? एक राम भक्त सेज है, उनका एक अति विश्वसनीय नौकर है। इस सेज की अनेक फैक्ट्रियां हैं, अति सम्पन्न व्यक्ति हैं ये, घर में नौकर चाकर हैं, बहुत बड़े हवेली में रहते हैं। यही विश्वसनीय नौकर आज बेईमान हो गया है, बहुत दिनों से मौका ना रखा है, कब मुझे मौका लगे और मैं इस लाला का गला काटूं। बस किसी चीज पर नजर है इस नौकर की, विश्वसनीय नौकर की किसी चीज पर नजर है, उसके कारण मौका ना रहा है कब मुझे अवसर मिले और कब मैं इस लाला का गला काटूं, ताकि वह चीज मुझे आसानी से मिल जाए, ऐसा विश्वास होगा उसको। आज घना अंधकार है, सेठ के साथ नित्य रहने वाला नौकर, ये हर एक के जीवन में ऐसे अक्सर आया करते हैं। विशेष क्या, जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे, बड़े सेवक बनोगे और बड़े सेवक बनोगे और बड़े सेवक बनोगे, तो ऐसे मित्र आपको आपके इर्द गिर्द घूमने वाले बहुत मिल जाएंगे, जिनको आप तो अति विश्वसनीय मानते हो, लेकिन होते हैं कैसे, जैसे कि नौकर। आज घना अंधकार है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तलवार निकालता है, मानो सेठ को आज मार डालेगा। सिक्योरिटी गार्ड होगा ना, इसके पास तलवार भी होती है सुरक्षा के लिए, लेकिन आज सुरक्षा ना करके आज गला काटने का, कौन हमारे उसे इससे मेरा नाम रखे। राम की इच्छा तो कुछ और ही है, मैं सेठ को मारना नहीं चाहता, मैं उस राम भक्त को मारना नहीं चाहता। उसी वक्त उस घोर अंधकार में एक सांत मस्ती में दौड़ता हुआ आया है, जो सेठ होते कुछ नहीं कहता। भक्तजनों, ये परमेश्वर के कारनामे बड़े विचित्र हैं, सारी सांत को चल रहे होंगे, लेकिन ये सांत सिर्फ नौकर को ही मारता है, सेठ को नहीं मारता। ये उसके विलक्षण कार्यक्रम है, ये परमात्मा के अतिरिक्त ऐसी अनहोनी बातें और कोई नहीं कर सकता। एक दौड़ता हुआ सांड आया है, आके जोर से इस नौकर को धकेलता है, अपना सिर मारता है, उसकी तलवार जो उसने खोली हुई है उससे थोड़ा सा नाक कट जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। सेठ नौकर की ओर देखते हैं, जोर से पुकारते हैं, हवेली से पांच से नौकर आ जाते हैं, उसे उठा के अपने बगीचे में पहुंचा दिया जाता है। मन में थोड़ी शंका हुई, तनिक सिठानी पास आ गए हैं, नौकर जाकर पास हैं, वैद्य जी को बुलाया है, उपचार इत्यादि किया है। सिठानी कहती है, मान ना मानो इसका दिल बेईमान है, आप इसे अति विश्वसनीय मानते हो लाला, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आज जो कुछ हुआ है इसमें मुझे कुछ दाल में काला दिखाई देता है, ये ठीक बात नहीं है। नौकर के पास बैठे मियां बीवी आपस में पति पत्नी बात कर रहे हैं, सेठ राम भक्त हैं, सेवक हैं, कहते हैं प्रिय, ऐसे ही फजूल में शंका करना पाप है, ऐसा मत सोच इसके लिए, ये मेरा अति विश्वसनीय नौकर है, ये अवश्य मेरी रक्षा करने के लिए ही इसने तलवार निकाली होगी, ना कि मुझे मारने के लिए, मत ऐसी बात सोच। और यदि ये सत्य भी है तो ऐसा स्वीकार क्यों नहीं करते कि परमेश्वर की इच्छा
यदि थी मचलता तो कोई बात नहीं थी, परमेश्वर की यदि इच्छा होती तो कौन था बचाने वाला मुझे, आज परमेश्वर की इच्छा विपरीत है तो कोई मुझे मारने वाला है।
इसलिए तलवार निकाली तब भी मुझे मार नहीं पाया, मारने का पूरा आशय था कि मार डालना है तब भी मुझे मार नहीं पाया।
ऐसा क्यों नहीं सोचती कि मेरे राम ने इस प्रकार मेरी रक्षा करी है, वह मेरे पूर्ण संरक्षक हैं। ऐसा सोचना ठीक नहीं, मत सोच ऐसी बात। नौकरी ध्यान चले गए हुए थे, ये आपस में पति पत्नी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। जो हुआ नौकर को होश आई, थोड़ी सी चर्चा इस नौकर ने सुनी, मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैं पतित हूं महाराज, ध्यान देना अभी ठीक नहीं हुआ है, नौकर भक्त है ना, सेठ परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपके सामने स्वीकार करता हूं, ये तनिक शंका का अंश तो मेरे अंदर भी उठा, पर परमात्मा देव तू मेरे ऊपर कृपा कर कि मेरे अंदर इसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना ना जागे। ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वैसे राम भक्त और कह रहे हैं तेरी कृपा से ये मेरा विश्वसनीय नौकर जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा होना चाहिए राम भक्त, ऐसा होना चाहिए एक सेवक। परमेश्वर की करनी सुबह तक ठीक हो गया। कुछ थोड़ी चर्चा बीच बीच में उसने सुनिए, मन में परिवर्तन हुआ। मैं पतित हूं, मैं आप जैसे सुहृद, आप जैसे भक्त, आप जैसे श्रेष्ठ परोपकारी व्यक्ति को मारने पर तुला हुआ। जब तक आप मुझे दंडित नहीं कर लेंगे महाराज, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे जो भी दंड दें मैं स्वीकार करूंगा। वैसे तो मेरी दो भावना का दंड तो मुझे मिल गया है, ये मेरा नाक कट गया है, पर फिर भी महाराज आप मुझे अवश्य दंडित करें तो मैं मानूंगा आपने मुझे क्षमा कर दिया है। ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक बात है, तेरा आग्रह है तो मैं तुझे दंड देता हूं। एक भक्त दंड दे रहा है अपने विश्वसनीय नौकर को, क्या दंड देगा? आज उसका नाम लेके कहते हैं तेरे शरीर तेरी वाणी को दंड दे रहा, तेरे मन को दंड दे रहा, इन तीनों चीजों के लिए दंड प्रपोज कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं। एक भक्त शरीर से कभी किसी का नुकसान न करना, ये प्रथम दंड है। सत्य प्रति आज से सद्भावना बनाए रखना, ये दंड दे रहे हैं एक भक्त अपने नौकर को, उसके किए पर, उसके कुकर्म पर। इस शरीर से औरों की सेवा करना, दूसरा दंड वाणी का दंड। आज से लेकर जीवन पर्यंत किसी के प्रति ऐसा शब्द प्रयोग ना करना जो उसको दुख देने वाला हो, और जीवन से नित राम 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 जपते रहना, यह दूसरा दंड है। तीसरा दंड तेरे मन को भी दंड देना है, शब्द मिलकर अपराध किया है, तेरे मन को भी दंड दूंगा। अपने मन से ये विकारों की विष जो है ना, इसे निकाल दे और इसे सदगुणों से संपन्न कर ले। कैसे सदगुण? नम्रता, सहनशीलता, दया, संतोष, ऐसे सदगुणों से अपने मन को संपन्न कर ले भक्त। ये सब चीज कब आएगी? जब तेरे अंदर किसी संत की सेवा का भाव आ जाएगा और प्रभु सिमरन में मन लग करना चाहेगा। एक भक्त ने एक सेवक ने अपने विश्वसनीय नौकर जो दुर्भावना से भरा हुआ है आज उसे दंडित किया है। भक्तजनों यही अपेक्षा हम सब सेवकों से होनी चाहिए। हम अपने आप को सेवक भक्त कहलाने वालों से यही अपेक्षा होनी चाहिए कि आपके प्रति जो दुर्भावना भी रखता है आपके अंदर उसके प्रति कभी दुर्भावना गलती से भी न आए, आपके अंदर उसके प्रति नित्य हर समय सद्भावना ही बनी रहे, क्षमा का भाव बना रहे। भक्तजनों विकसित करने योग्य दंड याद रखिएगा। अच्छे विश्वास करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। विकारों का तो आपको पता ही है इनका नाम क्या लेना, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें जो चर्चित नहीं है, जो वर्णित नहीं है और जिनसे हम पकड़े जाते हैं प्राय, उन्हीं बातों की इन एक दो दिनों में चर्चा होती रहेगी ताकि इन रोगों से मुक्त रहें, इन रोगों से ग्रस्त ना होते रहें। ये बड़े भीषण रोग हैं भक्तजनों। स्वामी जी महाराज कृपा करके हमें रोग मुक्त ही देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं। ये हमारे अंदर इतने भारी रोग हैं और अपने आप को रोगी न बनाइएगा।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते See you.